Dávají podatí své politiky. Vyběji vlastně červená hodnota. Mahátmu rád koupitat balanky, koupitatelé těch prvních boh. I was the lucky witness today of the most incredible, beautiful Abhisheka ceremony here with these most exquisite transcendental personalities who have decided to descend down or down, appear in Vrindavan, rather, in this beautiful Vrindavan, looking over the Yamuna, looking at the most beautiful place of Sri Krishna's pastimes, where the Braj Raj is in abundant quantities, imprinted by the lotus feet of all the bridge passes and the parshalas of the Supreme Lord as they are moving from Bansivat towards Sevakunja. In Gitana, Shungarvat, to all these transcendental places where the eternal pastimes are being manifested. Now here again, these pastimes have expanded once more in a very beautiful way, with so many devotees chanting and dancing virtually from all over the world, coming here by the grace of the Gurudeva, to once again have Braj Mandal Parikrama starting on Sharad Purnima, most auspicious full moon, where the full moon of Krishna Chandra has appeared in the form of Gopinath to glance upon us and to make our hearts feel the joy of shelter at the Sadhusanga, the whole entourage, the environment of Vrindavan, which is difficult to describe, even though in the holy scriptures great souls like Raghunathas Goswami and others have elaborately given us a feeling of this Vrindavan Dham. And I just don't know how to say anything decent with this insignificant tongue and lips when it comes to such incredible topics. But it is just charming, and I am so grateful that I can be here in such a moment, and that I can see all your smiling faces here, full of shraddha and utsaha for devotional service and appreciation. It's really something, you know. My fortune has no end because of that, and I simply wish to get the blessings of Radha Gopinath and Mahaprabhu, so that some or other I never lose the sight of the lotus feet of the bhaktas. Because once there was a very interesting occurrence. I took one of my godbrothers, who I met here, and who had lost a lot of his face for some reason, but he had come to Vrindavan, and I asked him, "Do you want to meet a pure devotee?" He said, "What do you mean a pure devotee? Not a pure devotee, Srila Prabhupada is not with us." "No, no," I said, "please come, I want to show you a pure devotee." So I took him to Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, who was staying at Sri Chaitanya Gaudiamath at that time. And my godbrother was in a challenging mood, so he asked Srila Puri Maharaj, "Puri Maharaj, you're chanting now for 85 years the Maha Mantra." Puri Maharaj said, "Yes." "What did you get from that? What benefit did you get from that? So much chanting." And I was feeling so ashamed. "Why did I take this person to this girl, Srila Puri Maharaj?" But Srila Puri much didn't take it that way at all. He was dwelling upon the question, pondering with very soft feelings emanating from him. And then he looked at him and he said, what I got from chanting all those years is the understanding that without the devotees, I'll be finished. When he said that, my God brother broke into pieces. He said, thank you for taking me to pure devotee. He said, thank you. I could not believe it. But it's true. So, seeing the devotees of the Lord, seeing those who are year after year dedicated, year after year doing all these efforts to take Chaitanya Mahaprabhu's message to every town and village in the world, publishing the most beautiful Vaishnava Granta and making Krishna available again and again and again. This is what we are celebrating, that what we are rejoicing here. And any moment, even a breach of a second, they say, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu Shastra Koyin, Lava Matra, Sadhu Sangha. Even a breach of a second. What to speak of hearing a class from a Vaishnava who is only knowing Krishna as the one and all of his life, and to be in the association of them and taking the remnants of the foodstuff that gives us hope. I just heard another little story I want to share with you. A person read in Padma Purana very recently, which was so amazing. I got so much hope from that story. There was this one person, and it was a woman, and she was receiving the betel nut, and she was chewing the betel nut, and then all of a sudden she spit the betel nut like they do, and it fell on the Vishnu temple, on the wall, the spitting of the betel nut. So she didn't think much about it, but the night of that day, she left the body. It was her time to leave this world, and the Yamadutas came to get her. And while the Yamadutas were just about to take her, the Vishnu Dutas showed up. And they said, no, you can't take her. Said, well, why not? She's very sinful. She has done many sinful things in her life. Yeah, but you don't know. She decorated the Vishnu temple. So, you have no influence over her. But when I heard that, by the grace of my spiritual masters who are boundlessly merciful, Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinoda, Srila Maharaj, all the Vaishnavas, I can feel that there is some hope even for me. Thank you very much.
रसानंद ब्रह्मचार्य गुरु महाराज जी संबंधे कुछ 15 मिनट के 20 मिनट
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्प्रकाराय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च कवितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवे नमोस्पादाय कृष्णप्रेष्ठाय उत्तरे श्रीमते भक्तिप्रज्ञाय केशवाय नाम्ने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद श्रीमान त्रिलाल प्रविष्ण विष्णुपाद आशोद सदस्य श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग गर्व प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्रागित आचार्य चतुर्दर्शन स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोवर में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता उपस्थित तीर्थपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मेरा यथावत प्रणाम। आज एक विशेष तिथि है जिस तिथि को ये शरद पूर्णिमा है। आज का दिन श्री गौर वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता नियामक मित्रिका प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदश सदस्य श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का तिरुधान महामहोत्सव है। मानव आज का दिन शारदीय रात है। मानव आज का दिन रातों में उनकी कुछ चीज के अभाव था, जिस अभाव के लिए मानव श्रीमती राधारानी अपना एक प्रिय परिकर को अपना अभाव में ही जिनको बुलाया है, इस आज उनको तिरुभाव महामहोत्सव। ये प्रभुपाद का जितने ग्रंथ है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद को पढ़ते श्री भक्तिविनोद ठाकुर श्री गौर कुशलदास स्वामी महाराज श्री जगन्नाथ दास स्वामी महाराज जो सब बहुत बड़े बड़े दायित्व लेकर के जो गए थे, और वह दायित्व जब गुरुवर्ग लोग अंदर ध्यान हो गए प्रभुपाद बड़े दुखी होकर के मायापुर में सोच रहे हैं ये गुरुवर्गों का आदेश को हम कैसे पूर्ण करें,
माइक ठीक है,
कैसे पूर्ण करें। उसी समय महाप्रभु अपना परिकरों के साथ में जितने सारे गुरुवर्ग प्रकट होकर के प्रभुपाद को आदेश प्रभुपाद को दर्शन देते हैं, कहते कोई चिंता मत कर तुम अकेला नहीं हो, इसलिए तुम्हारा पीछे मदद करने के लिए हम सबके सब तैयार किए, केवल तुम प्रचार प्रसार शुरू करो, हम सबके सब अर्थ बल जन बल हम सबके सब हम तुम्हारे लिए मदद करने के लिए भेज रहे हैं। इसलिए मानव महाप्रभु ने स्वयं प्रभुपाद को बोले, इसलिए जितने सारे प्रभुपाद का परिकर है जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सभा सदस्यों था सभा बदल, उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी वो अकेले नहीं आए, स्वयं राधारानी को निकुंज सेवा में श्री नारायण मंदिर को उनको सेवा में नियुक्त थे। राधारानी स्वयं आदेश करती है तुम अकेले मत जाओ, तुम अपना संपूर्ण परिकरों को लेकर के जाओ। जैसे महाप्रभु एक एक भक्तों के द्वारा एक एक अपना मन पुष्ट को उन्होंने स्थापित किया, उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी अपना मनोभीष्ट को एक एक शिष्यों को द्वारा देकर के सर्वत्र प्रचार और प्रसार करते हैं। जैसे श्रीमान महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी से आशीर्वाद नगर आदि का सर्वत्र प्रचार है करना, यद्यपि यह काम को महाप्रभु ने अपना एक परिकरण के द्वारा अपने गुरुजी को स्थापन किया है प्रचार प्रसार किया है, अगर यह चीज को संपूर्ण मुक्त प्रग्रह पृथ्वी में अगर दिखाई पड़ता है, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बोलते हैं ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ही महाप्रभु का यह वाणी को संपूर्ण रूप में जगत में स्थापन किया है, और उसी स्थापन में हमारे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज भी एक अन्यतम है, क्योंकि प्रभुपाद ने प्रचार प्रसार किया उसके बाद में उनको शिष्य लोग उपयोग किए, और उसमें हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज भी जिस रूप में उन्होंने सर्वत्र जाकर के प्रचार और प्रसार किया है, उसमें जो मूल स्रोत कौन है? तो इसमें मूल स्रोत प्रभुपाद का है ही है, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की उसमें एक विशेष है, जिन्होंने जिनको उपदेश दे करके उत्साह दे करके जिन्होंने उनको संन्यास प्रदान किया, इसलिए मुझे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के लिए कहा करते थे, वैराग्य युग भक्ति रसम प्रजत नरिमा मन भीष्म कृपा बुद्धि जह पर दुख दुखी केशव गोस्वामी प्रचार और प्रसार करते हैं। इसलिए अगर बोला जाए श्री चैतन्य मन अभिष्टम, अगर यहाँ पर बोला जाए श्री प्रभुपाद मन अभिष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं केशव कदा मह्यम ददाति सुपदातिकम, ये कोई अतिथि नहीं है। इसलिए प्रभुपाद मानो इनको द्वारा संपूर्ण विश्व में केवल इतना नहीं, उनको बाद में भी उनको मूल स्रोत रूप में किए थे, लेकिन इसी समय में अगर विचार किया जाए तो अगर श्री केशव मन अभिष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं नारायण कदा मह्यम ददाति सुपदातिकम, ये कोई अतिथि नहीं है।
बहुत बड़ी एक सुंदरता स्थापन करते हुए गए,
जो हमारा वैष्णव है, हम जो अपना को रूपानुगत कहते हैं, रूपानुगत का मतलब क्या है? ये इन्होंने ये रूपानुगत की हर क्रिया में इन्होंने ये रूपानुगत को स्थापन किया, जिसके लिए प्रभुपाद ने बताया श्री रूपानुगत भाव सिद्धांत धंत हरि। जैसे उन्होंने रूपानुगत जो विरुद्ध धर्म को उन्होंने खंडन करके उन्होंने जैसे शुद्ध भक्ति को स्थापन किया, ये भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज का जीवन में भी वही चीज को देखने के लिए मिलता है। जैसे उन्होंने ये विग्रह को स्थापन किया, जो कि हमारे किसी दौरे मठ में ये सफेद विग्रह नहीं, सारे विग्रह में वहां पर काले विग्रह है, लेकिन उन्होंने एक सफेद विग्रह को स्थापन किया, जिसको देख करके उनका गुरु भाई कुछ लोग बोले ये क्या सफेद विग्रह कब परिणाम मिलता है, इसलिए उन्होंने ज्यादा काला विग्रह ज्यादा हमेशा इसलिए उन्होंने सफेद विग्रह को स्थापन कर दिया। कुछ लोग गुरु भाई ने काला खुशी किया है, इसलिए उन्होंने ये सफेद विग्रह में कैसे रूपानुगत को छुपा हुआ है, इसलिए उन्होंने ये चीज को स्थापन करने के लिए उन्होंने विनोद बिहारी अष्टक उन्होंने लिखे। अब वो विनोद बिहारी अष्टक में वो कितने तीक्ष्ण बुद्धि थे और उनका दार्शनिकता, उनको विद्वता अगर देखना है वो अष्टक को पढ़िए, और उसी अष्टक को ऊपर में हमारे महाराज जी को टीका क्या है। अगर यह चीजें जब तक कोई नहीं पढ़ेंगे, हम लोग महापुरुष धारा में आए, हम लोग रूपांतर है, ये चीज हम नहीं बता सकते। इसलिए उन्होंने राधा चिंता निवेशन जैसे कार्तिक कुलोचिता श्री कृष्ण चरणों पर दे राधा लिंगद विक्रम, इसी श्लोक को उन्होंने कहा राधा या लिंगिता राधा राधा या अलिंगिता राधा लांगित, इसलिए राधा द्वारा चिन्हित और राधा द्वारा अलिंगित। यह चीज को बताने के लिए उन्होंने सूक्ष्म रूप में बताए हमारे महाराज जी से टीका लिखे, उन्होंने चैत्र चैत्रामृत का मान संपूर्ण सारा सूक्ष्म उतार दी, इसलिए महाराज उन्होंने उनको गुरु जी को जीवन के ऊपर जो ग्रंथ लिखे हैं इसको हम लोगों को विशेष रूप से अध्ययन करनी चाहिए। अगर हम हमारे महाराज जी का हृदय को अगर हम समझना चाहते हैं महाराज जी का हृदय में क्या तेजस्वी है, क्या उनके हृदय में संपर्क है, अगर यह चीज को समझना चाहते हो जरूर ये अष्टक के ऊपर में महाराज जी का जो व्याख्या है इसको आप जरूर पढ़िए, और उनका दार्शनिकता को अगर देखना चाहते हो उन्होंने एक एक श्लोक को द्वारा हम जो पढ़े एक एक श्लोक का जो गंभीर चिंतन केवल केवल रस नहीं केवल उसको अपने तत्व दर्शन केवल रस नहीं तत्व दर्शन के ऊपर में रस की जो गंभीरता है वो चीज को उन्होंने प्रकाशित किया और महाराज उसको टीका में बड़े विश्लेषण पूर्वक उसको व्याख्या करते हैं। इसलिए पूरा उन्होंने ब्रह्मा पुराण और महा लेकिन वेदांत का जो असली भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज किया जी को गौर वेदांत समिति और जो सारे संन्यास का नाम उन्होंने वेदांत वेदांत नाम रख करके नहीं वेदांत का असली किसका अधिकार है वेदांत ग्रंथ में ये वैष्णव का है और वैष्णव में इसलिए महापर्व आने से पहले जो उसके ऊपर में दूसरे दूसरे आचार्य के जो भाष्य था केवल दास्य रस तक उन लोगों ने दिखाया लेकिन महापर्व का परिकरों ने श्री बलदेव पिता उसमें प्रभु हमारे गुरुवर्गो ने वहां पर उन्हें सीता रस तक दिखाया इसलिए जन्मादस्य जतः मतलब क्या आद्य रस का जन्म हो जाता जिनसे आदि रस का प्रकट होता है तो कौन है आदि रस के मूल अधिष्ठान देवी कौन है रासे रासे स्वरूप कौन है कहते श्रीमती रामनारायण की जिनसे ही सारे रस की प्रकटता है इसलिए ये गौरी और वेदांत समिति को स्थापन करते हुए इसलिए ये निगम कल्पत और दलितम फलम ये श्रीमद भागवत भागवत का सारांश क्या जहाँ पर कृष्ण उद्धव द्वारा उन्होंने भेद करके जहाँ पर वंदे नंद व्रज श्री नाम पाल रे अभिस्मत जहाँ पर आसाम को चरण चक्र बोल करके जहाँ पर उद्धव को द्वारा भगवान ये ब्रज प्रेम को ही और उसमें गोपी प्रेम भी सर्वत्र बताते हैं इसलिए जहाँ पर भक्ति वेदांत शब्द प्रयोग करते हैं जहाँ पर केवल उन्नत उज्ज्वल रस ही जहाँ पर दिखाई पड़ता है और वहाँ पर कुछ दिखाई पड़ता ही इसलिए ये चीज को उन्होंने स्थापन किया है और शुद्ध ग्रंथ महापुरुष का जो था शुद्ध भक्ति सदाचार ग्रंथ इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उन्होंने बहुत सारे शुद्ध ग्रंथ रचना किया है और उसमें भी एक अलग अलग वैशिष्ट्य स्थापन किया जो तुलसी आरती है उसमें पहले जो
मायावादी आश्रम में कोई उनका जो निकलता था उसको थोड़ी सी कोई एक लेग पहुंच गया
आप सोच नहीं सकते कितने बिगड़ गए मायावाद लोग और उन्होंने क्या मथुरा मंदिर में मिले जो महाराज पहुंचा के दूसरे पास से पहुंचा मतलब इनका कोई सी एक लेख पढ़ते ही मायावाद भड़क गए उनके शरीर में आग लग गया मतलब इन्होंने इतने जोर जबरदस्त रूप में मायावादी को खंडन किया है इसलिए जितने सारे आचार जगह जो एक दीपा एक वैशिष्ट है ये आचार जो जीवन में ये सारे के सारे वैशिष्ट इनका जीवन में मिलता है और उन्होंने संपूर्ण विश्व भर में और उन्होंने जो गौरी मठ स्थापन किया देवाल का गौरी मठ इनका जो बुद्धि है इनका जो दिमाग का ये है वास्तव रूप में उन्होंने जो गौरी मठ का जो रूप दिया है उन्होंने कहा देवाल का गौरी मठ हाँ? और वहां पर तोरण में उन्होंने लिखा ये कौन सा तोरण है दिमाग का तोरण सुंदर दीप भावना देखो और उसको महाराज ने चीज बताए अच्छे तरह से नरहरि तोरण मतलब अगर कोई भगवत भक्ति जगत में प्रवेश करना चाहते हैं सर्वप्रथम भगवत भक्ति में बल क्या है सर्वप्रथम भगवत भक्ति में बल है महाराज बार बार ये चीज बताते हैं गुरु निष्ठा जिसको जितने गुरुदेव के चरण में जैसे देव प्राप्ति जथा देवे तथा जो तसे के कटिता कटिता प्रकाश जो महात्मा इसलिए भगवत भक्ति जगत में गुरु भक्ति उसमें नीर है इसलिए अगर भक्ति में कोई प्रवेश करना चाहते हैं आदो गुरु पदार्थ से इसलिए उन्होंने नारायण की वर्णन चुका है अगर भक्ति जगत में प्रवेश करना चाहते हैं गुरु चरण आश्रय और उनको निष्ठा ही भक्ति के बल है गुरु कर्तव्य क्या करेगा वहां पर लिखो मैंने परम विजय के श्री कृष्ण संकीर्तन करेगा क्या भगवत चिंतन गुरु ये नहीं बोलेगा तुम मेरा सेवा करो गुरु उनको भगवत भक्ति में लगाएगा भगवत भजन में उसको लगाएगा लगाएगा तो भक्ति में सबसे बड़ा माधव क्या है वैष्णव अपराध है सबसे बड़ा इसलिए उन्होंने इसलिए उनको हमारे सरल गोस्वामी महाराज 62 गजे का सिंह उन्होंने ये उपाध दिया है इसलिए ये उपाध में विभूषित किया है इसलिए उन्होंने पहले उन्होंने देखाया कैसे मथुरा का हाथी रूपी कैसे ये वैष्णव अपराध है महाप्रभु स्वरूप गोस्वामी को यहाँ पर बताते हैं यदि उसके माती हाथा उपाधि से छीन लेती है छोड़ दे पाता इसलिए भक्ति जगत में सबसे बड़ा जो खतरनाक वैष्णव अपराध है वहां पर वैष्णव अपराध दिखाया और वहां पर जो गेट में जो दोनों खड़े थे वहां पर दिखाया भागवत का जो तात्पर्य जगत पर भगवत भक्ति अगर भगवत भक्ति को अगर व्याख्या नहीं करते हैं देवाल पर गोली मटने का महापुरुष भागवत आठ जी एक भागवत की जरूरत नहीं जिसमें भगवत भक्ति नहीं दिखाया इसलिए अंदर में प्रवेश करते ही उन्होंने रखा जहां पर सर्वप्रथम उन्होंने का छापा था और जहां पर ग्रंथों पुस्तक आदि जहां पर निकलता है इसलिए उनका नाम उन्होंने का परमार्थ कर ले जिसको बताया उन्होंने वैकुंठ वार्ता वह जिस ग्रंथ में सकल वैकुंठ से ही भगवत जगत से ही वो वार्ता कैसे भद्र के आकर के और बृहद मृदंग रूप में संपूर्ण कैसे चतुर्दिग ये करता है इसलिए उन्होंने कहा परमार्थ खंड उसके बाद में रखा है चिंतन खंड जहाँ पर नित्य निरंतर जहाँ पर महापुरुष तथा महाप्रभु का कीर्तन होता है उसके बाद उन्होंने रखा उपास्य खंड है इसलिए उपास्य खंड में उन्होंने उन्होंने अपना सिद्ध स्वरूप को भी इंगित किया है इसलिए महाराज के सामने में उन्होंने अपना सिद्ध स्वरूप को भी मंदिर बनाते हुए जैसे तीन सीढ़ी बनाए पहले पहला सीढ़ी का जो रंग पहले नील वर्ण होनी चाहिए दूसरे सीढ़ी का रंग होनी चाहिए हल्दी वर्ण होनी चाहिए पीला वर्ण और तीसरे सीढ़ी उन्होंने बोले गुलाब रंग की होनी चाहिए तभी महाराज और मुनि महाराज ने प्रश्न किया ऐसे क्यों तो उन्होंने बोले पहला जो रंग है वो नील कांति स्वरूप श्री कृष्ण का वर्ण है दूसरे जो रंग जो पीला रंग वो उन्नत उज्जवल रस की मूर्तिमान स्वरूप श्रीमती तत्वधारिणी श्री राधा जी का स्वरूप बोले ये अनुकीजो ये रंग क्या है जो गुलाब रंग सुनते भाव विभोर हो जाते हैं तो वो बोलते हैं उनको विनोद देने वाले हाँ उनका अनुराग के रंग में रंगते हुए इनको जो विनोद प्रदान करते हैं तो ये किरण उसी समय जब उन्होंने अपना सिद्ध स्वरूप चिन्हित किया महाराज बोलते हैं उन्होंने उसी समय जो सही शिष्य होता है उनको भाव को पकड़ लेते हैं पकड़ करके वो किसी ना किसी रूप में सिद्ध स्वरूप बताते हैं लेकिन उनको ऐसे शिष्य होने चाहिए जो किसी को पकड़े इसलिए बाद में हमारे महाराज जी तब उनको स्वर्ग को उन्होंने स्थापित किए क्योंकि ये राधा कृष्ण को विनोद देने वाले ये विनोद देते थे और उसमें नाथ का विशिष्ट को स्थापन करते हुए जिसको प्रहलाद महाराज श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख आत्मनिवेदनम और उसके चार संप्रदाय उन्होंने ऊपर रामानुज मध्व विष्णु स्वामी बात उन्होंने चार संप्रदाय को भी मैंने प्रकट कर दिया है आचार्य प्रकट कर वहां पर बताए संप्रदाय बिना ने मंत्रा से विकला बता अतः तलो भविष्य की चतुरा संप्रदाय अगर कली युग में किसको मतलब मुक्ति करना तो चार संप्रदाय में कोई एक संप्रदाय में अंदर मुक्त होकर के उनको भगवत भक्ति करनी चाहिए इसलिए संप्रदाय अंदर मुक्त होकर के हमने ये चीज को स्थापित किया हमने दस अवतार दी कैसे कहानी का क्रम विकास उन्होंने भी दिखाया इसलिए जहाँ पर उन्होंने उपास खंड उन्होंने स्थापन किया जहाँ पर उन्होंने गोवर्धन खंड स्थापन किया फिर गोवर्धन और एक प्रचार पर तैयार है गौशाला है उसको गोवर्धन खंड जहाँ पर रोसई माधुरी का बनता है वहाँ पर पाठशाला है जहाँ पर श्री ईश्वरी राधा रानी श्याम सुंदर के लिए यहाँ पर रसोई बनाती है और उन्होंने एक ज्ञान खंड नाम रख दिया ज्ञान खंड कभी कहाँ पर है कभी उन्होंने पायखाना जहाँ पर लाठी उसका नाम ज्ञान खंड है मतलब उन्होंने कहीं उन्होंने स्थापन किया ये ब्रह्मों को कहीं उन्होंने विष्टा के साथ में तुलना दिया कि सभी अगर ब्रह्म है विष्टा भी ब्रह्म है इसलिए उन्होंने ज्ञान को भगवत भक्ति से एकदम ज्ञान को उन्होंने कि ज्ञान का कोई स्थान नहीं इसलिए हमें ज्ञान को तुलना करके उन्होंने भाईगढ़ स्थान को बोलते हुए ज्ञान कहे इसलिए और जो दूसरे तरफ से जो गए थे उनका नाम रखा ये मदन मोहन गए थे इसका नाम उन्होंने रखा मदन मोहन गए मतलब अगर कोई सदगुरु चरणाम से करते हुए गुरु जी का अनुगत करते हुए अगर सही सही रूप में भगवत भक्ति करे तो उनका प्रगति कहां पर निकलेगा कहां पर इसलिए कहते हैं तासा आवृत तो सौ विस्मय मान मुकाम जब पीतांबर दर्शन की साक्षात मनमत मनमत जैसे साक्षात कृष्णा ब्रज गोपियों के अंदर में जैसे मनमत का मनमत को लेकर भगवान प्रकट होते हैं अगर उसी तरह अगर कोई रूपानुग गुरु वैष्णव का अनुगत करते हुए
Very good. He has remembered me of so many things. He remembers, I have forgotten, but he remembered. Can you translate?
Just like Sri Rupa Goswami established one of his the heartfelt desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu in this world. So the same way Prabhupada Panakura, he established the heart desire of Chaitanya Mahaprabhu also. Means what Rupa Goswami established, then our Guru Parampara also, by the grace of Rupa Goswami, established that thing in this world. And that thing with Srila Bhakti Pragyan Kesamaraj came to this world to establish. Being carried forward by our Gurudev, Sri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. He said, Padma Gurudev, Sri Padma Gurudev had many wonderful, astonishing contributions to the world. Especially look at his Tulasi Kirtan. Before our Padma Gurudev came, and most people used to worship Tulasi Maharani. Like they use the word mala, Tulasi mala, but in the worship of the Satis, to Radha Krishna, there's no word, no use of the word mala. Therefore, our Prabhupada, from different scriptures and from his own realizations, he wrote the most astonishing Tulasi Kirtan, which we perform every day in the Vedanta Samiti. or you have a look at his Mangala Arati. They are narrated from the different books of the Goswamis, and one of them started the service of Sri Radha and Krishna. If you look at his Arati that he composed, especially in Bengali, described that we sing every day in Vedanta Samhita, describing the Arati of Srila Prabhupada, how it deeply went into the discussion of Guru Puja. What is the incense? What is the land? What is the water? These are the wonderful things all written by Arati, Srila Prabhupada Gurudev. Especially as long as Mayavad has not been rooted out of the heart, then there can be no establishment of Sri Bhakti. Sri Rupa Goswami has said, Bhakti Bhakti Spriha Yad Pisachi Nirivati. As long as the heart is haunted by the two wishes of Bhakti, material enjoyment, and Mukti, liberation, then there can be no question of experiencing the happiness of Bhagavad Bhakti. Then Mahaprabhu Gurudev, how wonderfully he uprooted the tree of Mayavad from this world. How? Before Pandurev, most people were thinking, oh, what is Vedanta Sutra? Vedanta Sutra is the book, the common reading, the commentary of Sankacharya, the goal of Vedanta Sutra is liberation. But how Pandurev described, no, that the goal of Vedanta is Bhakti. Therefore, by his literatures, and especially by his sannyasis, he gave it all the name Bhakti Vedanta, Bhakti Dan Bhaman, Bhakti Dan Narayan Goswami Maharaj. Then by this Bhaktivedanta, he showed that the real goal of Vedanta is pure devotion to Radha Govinda. If you look very nicely, he made the plan for building his Navadvip temple. Then he divided Navadvip temple into seven sections. And Gurudev has discussed all these things in his autobiography, in the autobiography he compiled, Srila Prabhupada Gurudev. Biography. There, Vedanta, the Devananda Gaudiya Math is divided into seven sections. And there are two gates. The first gate on the main road, that is called Narahari Toram, named after Sri Narahari Sarvigraha, means unless we perform surrender to the spiritual master and service to the spiritual master like Sri Sarvigraha, then there is no question of having darshan of Sri Radha Bhimala Bihariju. And just like when you come out the other side, that gate is called Madan Mohan. Just like you completely surrender and follow Gurudev, then when you come out, you come out in the service of Sri Madan Mohan. So Sri Devananda Gaudiya Math, he established the wonderful deities of Sri Varadev, Sri Mahaprabhu, Radha Vinod Bihari, and Sri Prabhupada, Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Then many people were thinking, oh, why he established the white deity of Krishna? It could be that maybe he's a little impoverished, he could not afford the black Krishna. Therefore he compiled the very wonderful Srivada Vinodhi Halitat Vaskikam. And there he described Radha Chitani Vesena Yastikanti Vilopata Sri Krishna Chanaman Mande Radha Nikita Vigraha. Which Krishna do we worship? We worship that Krishna who is always in separation from Srimati Radhika. Therefore taking all the leaders from the Srimad Bhagavatam, especially the pastime here in Vitala, how Krishna in separation from Srimati Radhika attained the complexion and the mood of Srimati Radhika. Therefore, which Krishna do we worship as Rupa Nukas under the guidance of Rupa Goswami? We worship that Krishna who is in separation from Srimati Radhika. Especially with the devotees who do not like that Radharani to be in separation from Sri Krishna. But we like that Sri Krishna will feel separation from Srimati Radhika. Therefore, he established the white mercy of Krishna. Then Srila Gurudev, when he was with Pujapad Muni Maharaj, Sanatana Guru, before he took sannyas, then they were describing the temple. Srila Padma Gurudev said, the steps going up to Thakurji, the first step should be blue, the second one should be golden complexion, and the third one should be reddish. Reddish, pinkish. Then they asked why, oh, the first one is Shambhigraha Sri Krishna. The second one is the personification of Uttarava Srimati Radhika. Then who is the third? What is the third step represented by the pinkish complexion? Then Srila Padmaguru became absorbed in some emotion. Oh, that Manjari who always gives me no or happiness to Radha Bihari, that is indicated by the third step. So Pujapad Rasadam Guru was saying, Every disciple cannot understand the mood of what Gurudev is giving at that time. So that time, our Gurudev himself established the Siddha Swarup. Pramatma Gurudev is none other than Sri Vinod Manjari. How his big temple at Devadatta Gauri Mahat established the four Vaishnava Sampradayas, headed by Brahma, Lakshmi, Rudra, and
four
Chakrishna. And also about just below them is the Acharyas who established their conception in Kali Yuga, like Sri Ramanujacharya, Sri Vibhavitya, Sri Vishnu Swami, and Sri Madhvacharya. So, forgive me, I can't remember the seven divisions, but the library that is Paramatthakanda. That is where all the literatures were stored, Paramatthakanda. Then there is the section of the printing press, Priyakakanda. Then there is the kitchen, that is where the preparations are made under the guidance of Srimati Radhakrishna for the service of Krishna. Then there is the Seva Kanda, where all the Brahmacharis and Sannyasis would reside. Then there is the Govardhan section. The section of Govardhan where the cows who are most beloved to Sri Krishna, they are served there. And the last section we call that the Gyanakanda. Gyanakanda means like the Mayavadis who wish to merge with Krishna. That luxury section where one passes still in Europe, that is called Brahmakanda, because we have no need for Brahm Brahm there, so we put it down the luxury.
Guru Maharaj, well, very good, highest, high class of Guru Nishtha. In same way, he was Rupanuga Vaishnava. What is Rupanuga? Those who are following Bhaktriya Swami Sindhu really know what Rupa Goswami and his transcendental Swarup Rup Manjari is doing. Always talking Radhika. In Radhika, happiness, happy. In his sorrow, so much heart. Feelings pain in her. So always serving Radhika. Sometimes Radhika may order him, order her, oh, stand up on the gate and don't let Krishna come inside. And Rup Manjari is standing on the gate. Oh, you cannot. Black, you should be very far away. Our Swami Ji is not alone. So, Rup Manjari is there. So, Guru Maharaj is telling, Radha Chinta Niveshena Jasya Kantir Bilukita. Why Radha should search Krishna very well? As in Srimad Bhagavat, it has been told. All the sakhis were searching Krishna. Radhika was also with Krishna. But when he left Radhika and came to Imlitala from Sringarbad, then he began to think about Radhika. Radha Chinta Niveshena Jasatantim Vilo. Krishna, that the sky color, Shyam, it went away. And in the form of Krishna, but golden color of Radhika came. So Guru Maharaj has established Radha Krishna in same color. Everywhere he is established. Once a person make Krishna like giving some
blue color,
collars, and he became furious. Why you did so? I don't want. I want that as Srimati Radhika is golden collar. What his collar is? Oh, Krishna collars. The same. And everywhere in India, in Assam, in Mathura, everywhere is this. No black. Especially we can see Rupa Durga, whole Govinda Lilamrita, and everything has come in his Mangalarti. Kiya chana, Sukha Adi.
Mayur Sukha Adi
Jatopi Kara. Mangala Jagaran Kare.
What
is the meaning?
Sumadhura Dhani Kare Jata Sakhi Gan.
What is the meaning? Here two planets. Oh, they are glorifying Krishna and they are making something that Krishna should avoid. Because time is over. And two parrots. Oh, they are speaking so pitiful thing that Guru Maharaj has written all these things. In Mangalari. So, if you want to know all these things, I have written in Guru Maharaj's life, all these things. So, you can read there. Also, you know that when Guru Maharaj, as a Vinod Brahmachari, he dwelt the mud, one day, Prabhupada told, oh, you can go and see my Gurudev, Sri Gaurakishordas Babaji Maharaj. He is now in Navadvip. Then our Guru Maharaj with his aunt meaning Pishima, Bua, Prabhupada ka pehla shishya, mahila shishya, first lady disciple of Srila Prabhupada. And Vinod or what name? Nemi Maharaj in Brahmacharya. Oh, they went to see Srila Prabhupada, Gaurakishordas Babaji Maharaj. And he was in where? In Paikhana room. Latrine.
Toilet.
And he had given what? Yes, shut up the door. Even district magistrate and SP of police came and they requested him that we will make a very beautiful ashram for you. Please come while you are in latrine. You should open the door, we want to meet you. Oh, I am very tired. I cannot open the door. The mental. Nowadays we are inviting so many officers, ministers, and they come and they inaugurate. But he did not care and did not open. And after that, Guru Maharaj came with his Buaji, auntie, and told, Prabhu, you should open the door, we want to take your darshan. He told, I am very weak, I cannot open the door. Our Guru Maharaj told that we are sons, disciples of Srila Saraswati Thakur, and he has sent us to take your darshan. Oh, you have come from Saraswati. Oh, at once you opened the door and they went inside. And to Guru Maharaj he told that your whole problems of your life I am taking. You also preach boldly in whole world. So Guru Maharaj speaking this used to weep, tears coming, that only by the boon of Srila Gaurakishordas Babaji Maharaj, I am preaching boldly everywhere. everywhere. In Midnapur, in Assam, where they wanted to kill him. But Guru Maharaj boldly told, those who take meat and eggs and wine, their mouth is like a drain. And thus they became very offended. And they began to throw stones at him. Then Guru Maharaj told that, I don't care all these things. And so many persons from that village came in the sight of Guru Maharaj and they were stopped. Everywhere I have seen, everywhere I have gone with him, in Medinipur, so many questions and answers. Boldly he used to give. He could not tolerate. वो कभी भी सह नहीं सकते थे. यदि गुरु महाराज के प्रभुपाद के संबंध में कोई एक भी कोई इधर उधर की बात करे, उसी समय में वो उसका खंडन करते थे. निम्बा नंबर में सहजिया सावड़ी, उन्होंने कहा प्रभुपाद कुछ नहीं जानते हैं रस का, वो आम की गुठली चूसते हैं, रस नहीं चूसते, रस हम लोग. साथ ही साथ में उन्होंने सावड़िया सावड़ी सालार पीते गलत, रावण सीतावरण और पांच प्रबंध लिखा, उसमें वो लोग कांप गए, गुरु महाराज के ऊपर में केस किया. और गुरु महाराज जी से हमने निवेदन किया कि गुरु महाराज जी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न, कलकत्ते में हाई कोर्ट में जो सबसे अच्छा वकील हो उसको कीजिए. गुरु महाराज ने हम लोग की बात सुनी और कलकत्ता से सबसे उस समय का बड़ा एडवोकेट लेकर के गए. और उसने कहा कि हम प्रमाण करने के लिए आए हैं, जो इन्होंने लिखा इन्होंने सत्य लिखा है. वहां के मजिस्ट्रेट ने कहा, न्यायाधीश ने, प्रभु आप लोग सुलहनामा कर लीजिए, अच्छा हम लोग सन्यासी हैं, हमारा ये काम है ये करना. तब किसी प्रकार से उनको कहा कि तुम लोग क्षमा मांगो, तो देन वो लोगों ने क्षमा मांगा गुरु महाराज जी से. ऐसे अद्भुत चरित्र. कभी निम्बार्क वालों ने किस पत्रिका में लिखा, ओ केशव कश्मीरी के शिष्य महाप्रभु थे, उन्होंने केशव कश्मीरी ने चैतन्य महाप्रभु को गोपाल मंत्र दिया. बस गुरु महाराज उस समय मथुरा थे, हमने दिखलाया कहे कलम पकड़ो, हमने कलम ली और वो बोलते गए, लिखे कि निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था. निम्बा लिखते थे चारों संप्रदाय में, ये झूठ मूठ का एक उनका नाम रख दिया है निम्बा. हमारे जीव गोस्वामी ने, हमारे गोस्वामियों ने किसी ने भी निम्बा उल्लेख नहीं किया कोई दिखलाए, अथवा चारों संप्रदाय के किसी भी वैष्णव ने आचार्यों ने नहीं लिखा. हमारे गोविंद भाष्य में श्री बलदेव विद्याभूषण ने और सब मतों का खंडन किया है, इनका नाम कहीं है ही नहीं है, इसलिए निम्बार्क नाम के कोई है नहीं. बस के गुरु जी महाराज के ऊपर में 2,00,000 रुपए का मान हानि का दावा किया. उनके वकीलों ने बताया कि उनको मत छेड़ो, वो क्या केचुआ खोदने पर सांप न निकल जाए, बिल होता है ना, तो उसमें कुछ केचुए होते हैं, अरे केचुआ निकलने के बदले सांप आएगा और काट देगा. वो केशव महाराज वैसा ही आदमी है, बड़ा भयंकर और दुर्दांत व्यक्ति है, वो वकीलों को भी परामर्श देता है, कानून के संबंध में इतना अभिज्ञ है, मत छेड़ो. तो वो लोग बस चुप हो गए. ऐसे ही मैं उनके साथ में सब जगह प्रचार में रहता था, नोट करता था, उनकी रसोई बनाता था, उनका कपड़े धोता था, परिक्रमा में भी सर्वत्र उनकी महिमा अगाध है. इसलिए वो गुरु निष्ठा जैसी थी, रूपानुग भी वैसे ही थे. नाउ हु विल यू You should say.
But translation.
Oh, he will.
Oh,
you should tell. What else?
Jap bulao.
Huh. In Hindi I have.
Gracias. done nobody but a Yunan. So you should always try to defeat the people who are criticizing our Guru Parampara. One time in Minnapur, that is near Calcutta, in Minnapur district, actually, Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj very boldly told that the people who take all the inedible substances like eggs and onions and fish and other non-vegetarian substances, their mouths are like gutters, their mouths are like garbage. And here it is, the gutters become very angry, some section of the audience become very angry, and they began to pelt stones. But that time, Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, some other people came in his support, and then the stone pelting and disturbance of the Sabha was stopped. So he was very, very fearless, and we can see the same fearless in the personality of our Acharya Dev, Om Vishnu Parashishman, Bhakti Vedanta Narayan Kesava Maharaj.
जब हम बोलेंगे नोट कर लो
निरंजनस्य ज्ञानञ्जनाश्लाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः विष्णुपदाय विष्णुपरिस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिदेवं स्वामी नाम्ने नमः विष्णुपदाय राधिकाय प्रियपदे श्री श्रीमान भक्ति वेदांत नारायण के नाम है माँ विष्णु बताए गौर पृष्ठाय भूत ने श्री श्रीमान भक्ति प्रज्ञा केशव के नाम है अच्छकल कतरुप्य कृपा सिंधु के च पुतिना भावने प्यो वैष्णदेव्यो नमो नमः
Shri
Gurudev has instructed me to glorify our Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. Today is his glorious disappearance day. So he left, we've heard so many times already today that he left. This is the first day in Kartik, and moreover, it's the day of Sharad Purnima, when Krishna played on his flute, called on the gopis. And just at that time, Srila Parambhurde, he left this world for the service of his Swami. So Srila Parambhurde, we've heard that right from his very youth, he was very beautiful, and always the most extraordinary personality. Kidnapped by an eagle and then returned. When he was very young, he was recognized by Srila Saraswati Prabhupada. Before Srila Prabhupada had any organization, he was when his aunt took him to see Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And Saraswati Prabhupada was describing his plans for an organization. And Srila Bhaktivinoda Kesava Goswami, you know, his aunt said that, how are you going to achieve this? You don't even have enough people to ring the bells during Arati. He said, through him, he will do it. This is even before Srila Bhaktivinoda Kesava Goswami Maharaj, before he entered into the service of Srila Saraswati Prabhupada. He was a very heroic personality in all respects. He came from a rich, very influential landowning family. And he himself was a very, very powerful personality, very strong, very influential. He was very unusual. He's a brahmachari. Because he was taking care of the lands. Srila Saraswati Prabhupada, they had many lands, and there were many Muslim tenants, but they weren't paying any rent. So Srila Parambhurde solved the problem. He caught one of them, and he dealt with it in such a way that all of them immediately began paying their rent. Everybody, there was no more problem anymore. So he used to ride around on gorgeous black horses, very unusual brahmachari. And some of the devotees, they would see Srila Parambhurde, they would ride from one place to another, doing court business, land business, so many things. They thought, he's just an expert man, a young man, but actually he has no knowledge at all. And one of the very senior scholarly devotees, the disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, one day he caught Srila Parambhurde reading Vedanta Sutra. So he became angry because the young Ramachandra is not supposed to read such advanced literature. He said, no, you're reading this or you're just moving the pages around. So our Paragurade, he said, very humbly, he said, if you like, you can ask me any questions. And he took the book away and he asked him questions. And immediately he began to explain in such a beautiful, very, very concise, very simple way that he read it, he understood it, and moreover, he realized the whole thing and he could explain it in his own way also. Just like the very last verse in Sri Vedanta Sutra. So it says, they liberated, shut out. Do we hear it from scripture? Baladeva Jibbul Sampravo, he's explained like this. We've heard it from scripture, shut out. But actually, paraphrase is not. Shabda means by chanting the holy name of Krishna, they become liberated. This is the very conclusion of Vedanta Sutra. So, not only he was very scholarly, so scholarly that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he gave his whole library to read. He was so impressed and so delighted with this young man. Srila Gurudev has explained that Guru Nishtha is the backbone of bhakti. And now Srila Paragurudev, he was the very embodiment of Guru Nishtha. We've heard so many times how he saved his Gurudev's life. He was so much fixed in the service, he had so much faith in his Gurudev, that even he would disobey his Gurudev. On one occasion, when his mother was just about to pass away, she wrote a letter to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, requesting that Srila Paragurudev would go back to visit her just before she passed away. So Srila Saraswati Prabhupada called in Paragurudev and he ordered him to go back and you see your mother. And Paragurudev left the room. And then the next day, Saraswati Prabhupada asked his disciples, so I don't see if you know, has he gone to see his mother? No, Gurudev, he's in his room. So then Srila Saraswati Prabhupada called Srila Paragurudev. He said, I told you to go see your mother and you haven't gone. And Srila Paragurudev said, oh Gurudev, after so many births, I've come to you, I found the lotus feet of a pure devotee Satguru. From you, I can cross this ocean of birth and death. From you, I can get the most elevated secrets, the most elevated service. Now, if I go back to see my mother, perhaps she'll tell me on her deathbed that now I have to leave the mat and I have to look after the family lands. And if she tells me that, then I'll have to obey. But how can I leave you? So for this reason, I haven't gone to see her. He had so much nishtha in his Guru Maharaj. Srila Gurudev has explained in Srila Paragurudev's biography that Srila Paragurudev did not trace his lineage back in terms of family. He said that when Radha and Krishna were performing their pastime, I must have been here somewhere, but I couldn't take part. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was performing his pastimes, I must have been there, but I couldn't take part. They were not so merciful, but my Guru Maharaj, he was so merciful that he pulled me to his lotus feet and he engaged me in his service. So in other words, our Param Gurudev, his relationship, everything was centered on his Guru Maharaj. He was not only very intelligent, but he was very rasik also. Srila Gurudev is described, or we've heard so many pastimes. So one time, now this is Damodara, and Srila Gurudev is beginning to recite the Damodara pastime. So on one occasion, our Srila Gurudev is reading Vrindavan Chant, Gopal Chant, Gopal Chant by Sri Jiva Goswami. So Srila Jiva Goswami is such a scholar, such a logician. And Srila Paragurudev was reading the passage where Srila Jiva Goswami narrates Damodara Leela. So our Srila Gurudev, as he always does, he will narrate this. And Gurudev was reading this passage. He said to Paragurudev, how can such a great scholar and logician be so rasik? And he began to describe how Nanda Baba Antai Krishna, and then Krishna refused to go to Mother Yashoda, Mother Yashoda standing like a tree. unable to move, almost unable to breathe. And then they're all pleading, and then finally, Rohini Maya says, but supposing she leaves, and then Krishna's crying, he runs to Mother Yashoda, Mother Yashoda's crying, Rohini is crying, everybody's crying. Nandabhava's also crying, everybody's drowning but Sanyaras. And then when Shiva Gurudev, right, it's Param Gurudev began to display, Gurudev says, such a display of ecstatic transformation, very, very rare to see. So Param Gurudev is so rasik also. He was a very fierce preacher. He would face anyone. Like when this great communist, Jyoti Babu, he met him in a flooded district. So Jyoti Babu, he was so-called philanthropist, he was looking after the people. And Param Gurudev, he was coming to collect. These people have been flooded out of their houses, flooded out of their crops, everything. And he comes to collect supplies for Gaudamana Parikrama and invite them to come for Parikrama. So Jyoti Babu, he was outraged. He was standing there smoking a cigarette. He said, you've come to beg from these people? Have you come to see Guru? Don't you see the flood? Param Gurudev said, I don't see any flood. The cigarette in your hand is still burning. Where's the flood? You should understand that flood, the fire, is a constant birth and death which is scorching. And we come to save them from this repeated fire of birth and death. On another occasion, he was facing a judge in a railway train. So judge is a very, very prominent person in society, Indian society at that time. So this judge said, I don't believe scripture. I don't believe anything that I can't see. So Param Gurudev, very busy, said, oh, do you know who your father is? Of course I know who my father is. But were you there when you were conceived? Do you know that that's your father? In the West, this is no big thing, but in Indian society, you ask a judge, are you sure this is your father? Shock, horror, this is outrageous. So then the judge accepted, and then Srila Param Gurudev preached to it, and he became convinced that, oh, actually sometimes we have to accept the evidence of Shastra. He was very strong and very powerful in defending the Sampradaya also. He did most extraordinary research to show that, describing Mayavada, and he showed that there were two Buddhas, and that Mayavada philosophy and the Buddha of Gautama, Shakyamuni Buddha, they're almost identical. Most extraordinary research he did. And then he maintained the mission of his Guru Maharaj when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur left this world. So the whole Gaudiya Mathas went into disarray. The publishing stopped, the parikrama stopped. Many disciples went back to their homes, they got married. But Srila Paramahansa, he left the confusion. He started his own math with many great devotees. And again he established printing of books, printing of newspapers, printing of journals. Again he established Brahmana Parikrama, again he established Gaudamana Parikrama. He used to travel the whole length and breadth of India. Great adventures with his devotees, like Srila Gurudev was narrated how they went even to Badak Ashram. Very, very dangerous at that time. Going through snow and storm and avalanches coming and threatening them. And going to the south of India, everywhere they were traveling to see all the holy places and hearing Harikatha all the way. So this great, heroic, scholarly, Rasi Acharya actually had two great branches, two great disciples. His one disciple was preaching very intensively to a small group of disciples in Keshiji Gaudiya. And his other branch, my Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, he was preaching very extensively throughout the world, but not so intensively, because his disciples were too unqualified and foolish. But now these two branches have come together, and our Srila Gurudev, taking the disciples that he's been working with so strongly and so closely for so many years, and spreading the whole message of Chaitanya Mahaprabhu all over the world. So on this very auspicious day of his disappearance, I pray for his mercy that I can have this Guru Nishtha, and just a drop of this service to his Guru Maharaj and our Acharyas. Hare Krishna. Wonderful.
एक समय ब्रजमंडल परिक्रमा समय हमारे गुरुदेव प्राय 500 यात्री निये परिक्रमा कर छिलें मथुरा ते उपस्थित होलें प्रथमे ओई समय ते परम पूज्यपाद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज परम पूज्यपाद भक्ति दैत माधव महाराज भक्ति प्रमोद पुरी महाराज एंड सो मेनी ऋषिकेश महाराज कई कई 11 जन सन्यासी 12 जन हमारे केशव जी गौड़ीय मठे उपस्थित थे और सब जखन एक जगह से छिले तखन ऋषिकेश महाराज एक प्रश्न करें এখানে আমাদের সব প্রাচীন প্রভুপাদের শিষ্যরা আছেন আপনারা সকলে বিদ্বান আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করে বলুন জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস কৃষ্ণের জীবের স্বরূপে কে তা কোন কৃষ্ণের দাসের সখা সখী বাসল্য ভাব কিছু আছে নাকি সর্বক্রমে তে হয় কেউ বলেন যে জীবের শুদ্ধ স্বরূপ তার মধ্যে কোনো কিছু ভাব নাই যেরকম সঙ্গ হবে সেই রকম তাহার স্বরূপ হবে তখন গুরু মহারাজ পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ গুরু মহারাজকে বলেন যে আপনি কিছু বলুন তখন গুরু মহারাজ বললেন যখন জীবের নিত্য শুদ্ধ স্বরূপ তখন তার মধ্যে নিশ্চিত কিছু না কিছু পোটেন্সি আছে নিশ্চিত হবে কোন সংক্রমে পেশেটি পাল্টানো যাবে না যে রকম হয় উদাহরণ দিলে একই গঙ্গা নদীর তট একই মাটি একই হাওয়া একই সূর্য রোশনি আম নীল জামুন তেঁতুল ইমলি ইত্যাদি 10 তরহ কে বীজ কো ওহা পর লাগায়া যায় एक ही गंगा पानी से सींचा जाए एक ही हवा वहां पर बहती है एक ही सूरज उनको प्रकाशित करते हैं तो एक ही समान सब में होना चाहिए सभी बीच से सभी एक ही समान चीज होना चाहिए किंतु होता तो है नहीं संग है सब प्रकार का किंतु इमली के बीच से इमली आम के बीच से आम कटहल के बीच से कटहल उत्पन्न होता है सभी एक समान नहीं होते इसलिए जीव के स्वरूप में जो नित्य सिद्ध भाव है नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं रिधि साध्यते जिसके स्वरूप में जो है वही प्रकाशित होगा संग से वो बदल नहीं सकता यशोदा मैया जानती हैं कि हमसे श्रेष्ठ गोपियां हैं यशोदा मैया का भाव नहीं बदल सकता शिवास पंडित महाप्रभु के परिकर थे किंतु महाप्रभु चेष्टा बहुत किया नारायण का सेवा वो छोड़ नहीं सके अनुपम रूप गोस्वामी के भाई रूप और सनातन दोनों ने कहा आप कृष्ण का भजन करो उन्होंने कहा ये ठीक है दूसरे दिन बोले यदि मैं राम को छोड़कर के कृष्ण का भजन करूंगा तो हमारा प्राण चला जाए मैं अपने जीवन को रख नहीं सकता तो रूप सनातन बड़े प्रसन्न हुए अच्छा तो ठीक है राम जी का भजन करो
मुरारी गुप्त हनुमान जी का अवतार, मुरारी गुप्त,
हाँ मुरारी गुप्त हनुमान जी के अवतार है, इनको बदल नहीं सके। इसलिए जिसका जो स्वरूप है पोटेंसी रूप में है संग से, वो कुछ प्रकाशित होगा उनके संग से, किंतु जिसके अंदर में जो भाव है वही प्रकाशित होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए सुन करके सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, पूज्यपाद श्रीधर महाराज भी प्रसन्न हुए और वो भी बोले कि हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। इस तरह से गुरु महाराज के तरह तरह के अपने अपने विचार होते थे, उनके विचारों का वैशिष्ट था। कभी पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी में और गुरु महाराज जी में तर्क होता, श्रीधर महाराज स्थापित करते थे कोई वस्तु को और गुरु महाराज उसका खंडन करके अपना पक्ष स्थापन करते, और फिर श्रीधर महाराज जी उनके विचारों का खंडन करके अपना नया विचार स्थापित करते, लोग सुनते और अवाक रह जाते, आश्चर्य चकित रह जाते थे उनके विचारों को सुन करके। ये हमारे स्वामी जी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण प्रभु, ये भाई एक्सीडेंट गुरु जी से संन्यास नहीं लिया। उस समय भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी थे मायापुर में, प्रभुपाद के प्रमुख शिष्यों में एक, पूज्यपाद श्रीधर महाराज भी थे, बन महाराज थे, प्रभुपाद के बहुत से शिष्य थे, किंतु उन्होंने हमारे गुरु जी को ही क्यों संन्यास गुरु के रूप में स्वीकार किया। वो जानते थे अपने विचार के बहुत दृढ़ है और बचपन से ही दोनों में मित्रता थी, दे वर फ्रेंड, बोजम फ्रेंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ श्री अभय चरणनाथ प्रभु के इन मठ, ही वॉज जूनियर ऑफ और गुरुदेव, गुरु महाराज जॉइन मठ इन 1916 एंड ही जॉइन
1723
पर है,
22
लाइक सो, बट he went to Mathura and took sannyas from our Gurudev and then he began to preach about the whole world and in couple of years miraculously he preached over the whole world, wrote so many books and thus he made so many sannyasis but not Vedic sannyasis. Like Tamal Maharaj, Tamal Goswami Maharaj. Jai Pataka. What is this name? But he wanted to preach over whole world. So he gets a Nasvalli Danda. And he knew that they are not qualified for Danda. So he gets these names, not Vaidhi. He knew all these things, but he knowingly not yet, and he one knows knew that they cannot be online, after some days they will depreciate. So I think that 99% they are what left sannyas, and those who are sannyasi they are also now ready to give up sannyasi. So I don't want to make sannyasi like him. You should be very strong and bold. I think that you will preach the mission of your Gurudev everywhere. As bold as he was and my Gurudev was as bold, you should be very bold. Don't fear to anyone. Tell what is true in this world. Gaur Prabhanande.
साढ़े सात
बनवारा